मीका अध्याय सात। भविष्यद्वक्ता कहता है, मीका अध्याय सात पद एक, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर व रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। मैं उजड़ गया हूं, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। मीका अध्याय सात पद दो और तीन। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगते और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है। हाकिम घूस मांग रहा है और न्यायी घूस ले रहे हैं। मीका अध्याय सात पद तीन में आगे लिखा है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। वह अपनी ख्याति के कारण जो चाहता है पा लेता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। मीका अध्याय सात पद चार। उनमें से जो सबसे उत्पन्न है वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। आपका समय आ रहा है। आप परमेश्वर के नियम का दिखावा तो करते हैं, लेकिन आपका दिन आ रहा है। मीका अध्याय सात पद पांच और छह। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिन से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। यीशु ने इसका संदर्भ दिया था। मीका अध्याय सात पद सात। परंतु मैं प्रभु की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। एकदम खाली स्थिति बहुत निराशाजनक है। परमेश्वर के काम या सामर्थ या प्रेम या कृपा, अनुग्रह और सत्य से एकदम खाली। मेरी एकमात्र आशा, मैं प्रभु की ओर निहारता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मीका अध्याय सात पद आठ और नौ। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही प्रभु मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। पुराने नियम में जहां जहां क्रोध का संदर्भ है वो आने वाले महाक्लेश से संबंधित है। परमेश्वर के उस बड़े क्रोध का समय जो पृथ्वी पर भड़केगा और इसराइल को भी उसे गुजरना पड़ेगा, जिससे मुझे भोगना होगा। मीका अध्याय सात पद नौ। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वो मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। उस समय वो मुझे उजियाले में से निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा, और इसराइल बचाया जाएगा, क्योंकि वचन ये घोषणा करता है, सियोन से एक छुड़ाने वाला निकलेगा, जो पुत्रों के हृदय उनके पिताओं की तरफ मोड़ेगा। और उस महान दिन जब सियोन को प्रसव पीड़ा उठेगी और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा वे यीशु मसीह का पुनः आगमन का कारण होंगे। मीखा अध्याय 7:10-14। तब मेरी बैरिन जो मुझसे ये कहती है कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, वो भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढापेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच की नाई लताड़ी जाएगी। तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अशूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र समुद्र और पहाड़ पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे, तो भी ये देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की, जो कर्मेल के वन में अलग बैठती हैं। वे पूर्व काल की नाई बाशान और गिलाद में चरा करें। परमेश्वर के काम तो सदा ही अद्भुत होते हैं। मीखा अध्याय 7:15। जैसे कि मिस्र देश से निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। जैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और जीवित रखा और लाल समुद्र को विभाजित किया, वैसे ही परमेश्वर फिर से लोगों के बीच में अद्भुत चमत्कारिक रूप से काम करेगा। मीखा अध्याय 7:16। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लज्जाएंगे। परमेश्वर रूस की आक्रमण करने वाली सेनाओं को नष्ट करेगा। उसने कहा, तब मैं अन्य जातियों के सामने उनको शुद्ध करूंगा और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर हूं। वो ऐसे काम करेगा जैसे उसने उन्हें मिस्र से छुड़ाते समय किए थे। मीखा अध्याय 7:16-17। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प की नाई मिट्टी चाटेंगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेंगी। महाक्लेश के समय वे पहाड़ों और चट्टानों से पुकार पुकार कर कहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6:16-17। हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। मनुष्य अपने बिलों से रेंगते हुए बाहर निकलेंगे। अब आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवित रहने के लिए शरण स्थल बना रहे हैं। वे आपको बता सकते हैं कि आपको कितनी गहराई तक जमीन में खोदना चाहिए और रेडियो धर्मी किरणों से बचने के लिए और बमों के गिरने से बचने के लिए कितनी मिट्टी आपको ऊपर के हिस्से में चाहिए होगी, और आप अपना छोटा शरण स्थान कैसे बनाएं, आदि आदि। जब यहां आणविक विध्वंस होगा, तब अगर आप वहां हो तो ये समझदारी होगी कि आपके पास छिपने के लिए इस तरह का एक बिल हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें वहां नहीं होना है। और अगर मैं इस आणविक विध्वंस के बीच यहां हूं, मैं भागकर किसी बिल में छुपने नहीं जा रहा हूं। मैं उस जगह को ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां पर ये धमाका होने जा रहा है। मैं ठीक उसके नीचे जाकर खड़ा होऊंगा। मैं उस विपत्ति और डर को चुनूंगा, क्योंकि सारे आणविक विध्वंस के बाद मैं तो जीना नहीं चाहूंगा। किरणों के द्वारा होने वाली धीमी मौत में जीना, ओह ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन वे सर्प की नाई मिट्टी चाटेंगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों से कांपती हुई निकलेंगी। सोचिए, मनुष्य रेंगने वाला जंतु के समान बन जाएगा, लालच के कारण, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध उसके विद्रोह के कारण, परमेश्वर की बात ना सुनने के कारण, क्योंकि उसने आदमी को बनाया। मानवतावाद ने मनुष्य को सबसे ऊपर रखकर परमेश्वर को राजगद्दी से उतार दिया और मनुष्य को राजगद्दी पर बैठा दिया। मनुष्य उस सिंहासन पर से जिस संसार में आप रहते हैं क्या कर रहा है? उसको सिंहासन पर से हटाया, जैसे उन्होंने परमेश्वर को हमारी शिक्षा से हटाया, जैसे उन्होंने परमेश्वर को हमारे राष्ट्रीय जीवन से हटाया, जैसे उन्होंने परमेश्वर को आदमी के साथ बदल लिया और आदमी को सिंहासन पर बैठाया और घोषित कर दिया कि मनुष्य परिवर्तन क्रम में सबसे आगे है और इसलिए ऊपर है। ये आकस्मिक घटना का फल है, ये परमेश्वर की सृष्टि नहीं है। मनुष्य राजगद्दी पर है और देखिए कि मनुष्य आपकी दुनिया को कैसी समझ प्रदान कर रहा है। हम पैसे को हथियारों के लिए खर्च कर रहे हैं, वो भी इस डर से कि जो सिंहासन पर बैठा है वही संसार को चला रहा है। और फिर अगर वो आणविक विध्वंस के द्वारा इस संसार को मिटा डाले तो क्या बुराई है, क्योंकि हम एक दुर्घटना के द्वारा ही तो आए हैं। हो सकता है कि हम एक दुर्घटना से चले भी जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप जानते हैं, कौन कह सकता है कि ये दुष्ट है, कौन कह सकता है ये गलत है? सब कुछ उचित सा लगता है। तो अगर मेरे जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है कि मैं पूरी जाति को या लोगों के एक समूह को नष्ट करूं, तो कौन कहने वाला है कि यह गलत है? क्योंकि यहां अच्छाई का कोई विश्वव्यापी आधार नहीं है, ये अस्तित्व में बने रहने की विद्या है। इसी मानवतावाद ने हिटलर को बढ़ाया और बिना भले बुरे के ज्ञान के उसने लोगों को नाश कर दिया। वे यहूदियों को और ईसाइयों को नष्ट कर देते थे। हिटलर का दरिंदगी का शिकार होने वाले केवल यहूदी ही नहीं थे, जर्मन में हजारों ईसाइयों को भी गैस की भट्टी में नष्ट किया गया था। लेकिन कौन कहे कि ये गलत है? मगर जीने की लड़ाई या अस्तित्व में बने रहने के लिए लड़ना सही है? आप चीन में नया प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए 1 करोड़ लोगों को भूख से मार सकते हैं। आप यूक्रेन में लाखों रूस वासियों को केवल अपना समाज स्थापित करने के लिए नष्ट कर सकते हैं। ये समाज की भलाई के लिए है। कैसर प्रभु है, मनुष्य सिंहासन पर, परंतु मनुष्य ने अपने आप को रेंगने वाले जंतु के समान कर लिया। वो अपने बिल से, अपने पिंजरे से रेंग कर बाहर निकलेगा। मीखा अध्याय 7:17-18। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थर थराती हुई आएंगी और वे तुझसे डरेंगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? मुझे ये अच्छा लगा। मीका अध्याय 7:18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध ढांप दे, अपराधों को अनदेखा कर दे? वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। अतः परमेश्वर अपने लोगों को वापस लेने जा रहा है, वे अभी भी उसी के लोग हैं। वो अभी भी कहता है मेरी प्रजा, वो अभी भी उनके साथ व्यवहार करने और उनको अपने पास लौटा लाने जा रहा है। मीखा अध्याय 7 पद 19 और 20। वो फिर हम पर, इसराइल पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लता डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वो सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वो करुणा पूरी करेगा। हे परमेश्वर, अपने वचनों को पूरा कर। मीखा अध्याय 7 पद 20 में आगे लिखा है, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। भविष्यत वक्ताओं का दृढ़ विश्वास परमेश्वर के वचन में है। वो सचमुच ऐसा ही करेगा, ऐसा ही होगा। कैसा महान परमेश्वर है जो अधर्मों को क्षमा करके हमारे अपराधों को अनदेखा करेगा और फिर से अपने लोगों, अपनी प्रजा पर अपना स्नेह और अपनी महिमा उंडेलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा महान परमेश्वर है जो कृपा दान करके प्रसन्न होता है। तू नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सब पश्चाताप करे। तूने हमारे साथ बहुत धीरज और सहनशीलता और कोमलता दिखाई है। प्रभु, तूने हमें प्रेम के धागों द्वारा अपनी ओर खींचा है कि तेरी सहभागिता का अनुभव पाए, अर्थात तेरी मनमोहक संगति को। हे प्रभु, तेरे साथ हमारा रिश्ता होने से हम बड़े फायदे में हैं। तेरे साथ चलने में हमारे जीवन में आशीषें और महिमा आई है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और मसीह के अंतर्वास द्वारा हमारी सहायता कर कि हम ऐसे ही बने और वो काम करें जो तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य है। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको सुंदर समय दे। वह इस संसार में व्याप्त दुष्टता, बुराइयों से आपकी रक्षा करें और आपको बचाए रखें। आप उसके साथ और उसके लिए जिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मनोरम और मीठी सहभागिता आपके हृदय और आपके जीवन में बनी रहे।